نماز بے حیائی سے کیسے روکتی ہے، منکر سے کیسے روکتی ہے؟ دیکھیے، جب دن میں 5 بار آپ کا سامنا ہو بادشاہ سے، تو کیا آپ اپنے آپ کو داغدار رکھیں گے؟ شرم نہیں آئے گی؟ کسی انسان کا دل دکھایا ہو تو اس کا سامنا ہو کیسا لگتا ہے؟ کسی کی برائی کی ہو اور آج رات کو اسی سے ملاقات ہونی ہے، اور یہ بھی پتا ہے کہ اس کو بات پہنچ چکی ہے، کیا بنے گا؟ شرم آئے گی نا؟ کسی ایسے کا حق مارا ہو نا جو پاس ہی نہیں، باہر کے ملک رہتا ہے، ہم کہتے ہیں دیکھا جائے گا، جب آئے گا تو دیکھا جائے گا، لیکن جس کا حق مارا اس سے سامنا ہونا شام کو کیسے ہوگا؟ لاج ہوگی، ہم حق تلفی نہیں کریں گے ان لوگوں کی جو ہمارے ارد گرد ہیں، کیونکہ ابھی انہوں نے آ کے پوچھ لینا ہے۔ تو اللہ کی ذات پہ کوئی مثال نہیں ہے، لیکن اپنے اوپر لیجیے، جب انسان شعور کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو یہ ممکن نہیں کہ وہ نافرمانیاں کریں۔ اور یاد رکھیے، لفظ پردہ، آپ لوگوں نے مجھے لفظ پردہ دیا، نماز اور پردے پہ بات کریں۔ میں یہ سوچتی ہوں کہ پردہ کیا ہے؟ آپ دیکھیں نا، پردہ لگا دیتے ہیں، پردے کئی قسم کے ہوتے ہیں، ایک کھڑکیوں پہ لگائے جاتے ہیں، ایک پردہ آنکھ پہ آ جاتا ہے، موتیے کا پردہ، ایک وہ پردہ ہے جو ایک عورت اپنے آپ کو دوسروں سے چھپاتی ہے، ایک وہ خوبصورت پردے ہیں جو آپ گھر کو مزید خوبصورت کرنے کے لیے کرتے ہیں، مختلف طرح کی چیزیں ہیں نا۔ آپ دیکھیے کہ جب اندر حیا ہوتی ہے نا، اندر حیا ہوتی ہے، تو انسان کبھی بھی بے پرد نہیں ہو سکتا۔ کچھ لوگوں نے اپنے لیے ایک معیار رکھا ہوا ہے، مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے، اور کب ہوتی ہے؟ جب میں کسی ملک میں کافی عرصے کے بعد جاؤں، جیسے میں نے ہیوسٹن میں کئی سال گزارے ہیں، پھر بہت سال کے بعد میں جب وہاں گئی اور کچھ لوگ ملے جن کو میں پچھلے 10 سال پہلے بھی جانتی تھی، تو میری نظریں کیا ٹٹول رہی تھی، جو میں آپ کو تھوڑا سا ہنٹ دے رہی ہوں، 10 سال بعد بھی یہ ویسے ہی ہیں، مطلب اچھی ہیں، میں بری نہیں کہہ رہی، لیکن چینج نہیں۔ جو دوپٹے میں آتی تھی 10 سال پہلے نماز درسوں میں، آج بھی دوپٹے میں، جو چادر اوڑھ کے آتی تھی وہ آج بھی چادر میں، جو اسکارف لیتی تھی آج بھی اسکارف میں، جو نقاب لیتی تھی وہ آج بھی۔ بہت کم لوگوں کو دیکھا کہ جو چینج ہوئے ہوتے ہیں، لیکن اس کے برعکس آج آفس میں ایک بچی آتی ہے، بازو بھی پورے نہیں ہوتے، کپڑے بھی پورے نہیں، کھینچ کھینچ کے پیچھے سے کمر سیدھی کر رہی ہے، اور سائن کر کے جاتی ہے قرآن کے کورس میں، پھر ایک دن، دوسرا دن، تیسرا دن، اور ایک دو سپاروں کے بعد دل کی دنیا بدلی ہوتی ہے۔ یہ ہم دن رات دیکھتے ہیں، فرق کس بات کا ہے؟ اتلو ماؤں کی یہ لئی کمی لگتی تھا۔ آپ چاہتی ہیں آپ کی بچیاں با حیا کپڑے پہنے، آپ کی نہیں مانیں گی، سیدھی سی بات ہے، ابا سے ڈرا لیں، چلنے ڈریں گی، پھر ان سے بھی منہ ماری کریں گی۔ کسی دیندار کے ہاتھ میں کوئی جادو کی چھڑی نہیں جو آپ کی بچیوں کے کپڑے با حیا کر دے، یہ چھڑی ان کے اندر لائے گی۔ کب؟ جب ان کو خود اس چیز کا احساس ہوگا کہ ہمارے رب نے ہمیں کس بات کا حکم دیا۔ اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو زندہ نمازوں اور زندہ قرآن کے ساتھ جوڑ دیں، خود بہت حیا آ جائے گی۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تمہارے اندر حیا کی کمی ہو جائے تو جو دل چاہے وہ کر لو، آج ایسے ہی ہو رہا ہے۔ سچ بتائیں، اپنے اوپر لیتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، میں سعودی عرب کی بات نہیں کر رہی، مجھے نہیں پتا کہ وہاں جتنا حجاب اور نقاب ہے وہ کسی کی چوائس ہے یا گورنمنٹ، ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، لیکن الحمدللہ وہاں جا کے دل تو خوش ہو ہی جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں اندر بہت گندے کپڑے پہنتے ہیں، تو آپ کیوں اندر ان کو دیکھ رہے ہیں؟ باہر کے کپڑوں کے اندر ہم سب نے کچھ پہننا ہوتا ہے، تو کوئی دوسروں کو کہتے ہیں کہ وہ دیکھو؟ نہیں دیکھ کہتے نا، باہر کیا پہن کے نکلتے ہیں؟ آپ کو ایک رنگ دکھتا ہے، ایک کلچر دکھتا ہے۔ ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں، ہمارے پاکستان کا کیا حال ہے؟ ہمارا حجاب، پردہ، لباس کس رنگ کا ہے؟ ہم نے بھی خاص سرٹن خوبصورت طریقے کا رنگ رنگ سنبھالا ہوا ہے، اتنا ہی کافی ہے، اور کالا بایا، پہلے ہلکے رنگ میں بدلا، پھر رنگ بدلا، پھر ببایا، چادر میں بدلی، چادر میں موتی لگ گئے، موتیوں کے ستارے لگ گئے، اور پھر دوپٹے کے سوٹ کے ساتھ ہی کہا یہ بھی تو چادر ہی ہے، یہ ہمارا کیا رنگ برنگا اسلام ہے؟ مجھے کبھی نہیں سمجھ آتا۔ آپ اندر سونے جیسے کپڑے پہنے عورتوں میں بیٹھے ہیں، آپ ہیرے موتی جڑ لیں، آپ دبکی سلما لگا لیں، آپ مکیش کر لیں، آپ سرخ رنگ پہن لیں، پیلا پہن لیں، نیلا پہن لیں، مقصد ہے نا کہ آپ خوش ہیں، باہر والوں کو کیوں پریشان کرتے ہیں؟ دیکھیں، میں نے کبھی اتنا ڈائریکٹ ٹاپک نہیں یہ کیا، لیکن میرا دل کر رہا ہے، کیونکہ آپ سارے میرے اپنے ہیں، जब एक औरत घर की दहलीज से बाहर जाती है, सबसे पहले तो ड्राइवर से सामना होगा, फिर हो सकता गेट मैन होगा, फिर बाहर से गाड़ी मुड़ेगी, जिधर से रस्ते में जो मिलेंगे, ये भी तब जब हम अपनी गाड़ियों में जाते हैं, फिर हम मार्केट में उतरेंगे, फिर गाड़ी से उतरते में हो सकता है हमारा भी सब कुछ खुल जाए, फिर जिस जिस दुकानदार से हम जाकर बातचीत करेंगे, हमारा बोलना, हमारा बात करना। किसी जगह मैं खड़ी थी, अपने स्कूल के किसी काम से हम गए थे, और मैं सोची थी कि हमारे कहीं जाने का मतलब और दूसरे किसी के आने का क्या फर्क है। औरतें उस आदमी से, जो दुकानदार से, ऐसे बातें कर रही थी वल्लाहि कि इतना लाड और प्यार ना तो कोई सगे भाई से करता और ना शोहर से करता। जेवर बनवा रहे थे हम गोल्ड की कुछ ट्रांजेक्शन के लिए ज्वेलर पे गए और वहां मैंने ये मंजर देखा। तो मैं ये सोच रही थी इस औरत को बिल्कुल नहीं पता ये कैसे लाड़ कर रही है उससे। मैंने लेके जानी है, मैं तो बनवानी है, तो मैंने वैसे करना, पहन पहन के दिखा रही है, कर करके दिखा रही है, मशवरे भी उनसे ही करती है, साजरा कि नहीं साजरा, लग रहा अच्छा कि नहीं लग रहा, इसकी नजरों में कोई नहीं। और जवान बेटी साथ बैठी है जिसका जेवर बन रहा है, दुकानदार नमरत तो नहीं होते, और उनसे पूछती भी है कि साजरा कि नहीं साजरा। ये बेतकल्फियां किसने सिखाई हमें? ये जो हम दुकानदारों के साथ जाके इतनी प्यारी टोन में बात करते हैं कि हो सकता है मियां तरसता ही चला जाए दुनिया से कि कभी मेरे से भी सीधे मुंह बात कर लो। क्या लगते हैं ये दुकानदार हमारे? देखिए, अगर हमारी औरतें बाजारों के अंदर जाना कम कर देना, यकीन करें हमारे आधे से ज्यादा मसाइल खत्म हो जाए। यहाँ अगर बात छेड़ी है तो मुझे याद आ गया, मैंने अभी 2-2.5 माह गुजरे होंगे शायद, फ्रांस में पेरिस में एक लेक्चर दिया था शॉपिंग के आदाब और मामला, यानी शॉपिंग के बारे में हर चीज। मेरी उम्मीद से भी ज्यादा फायदा हुआ लोगों को, और मैंने नियत की थी तभी कि मैंने पाकिस्तान जाके इसकी 20-25 हजार सीरीज बनवा के बांटनी है हर गली नुक्कड़ पे। तो क्योंकि जितना शॉपिंग का क्रेज आज मैंने अपने मुल्क में खवातीन को देखा, इतना बाहर नहीं है। हम सारा साल शॉपिंग नहीं करते, यहाँ भी आके अल्लाह बचा ही रखा हुआ। वजह के अल्लाह घर बैठे जरूरतें पूरी कर देता है, लेकिन आप थोड़ा सा इस पे गौर तो करें। हमारी खवातीन जो बाजारों में जाके अपनी बेपर्दगी कराती है, ये जायज है? अबू बकर भेजते आयशा को, और उमर भेजते हफ्सा को, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेजते खदीजा को, ना वो बाप भेजते, ना भाई भेजते, ना बेटे भेजते। जो बेतकल्लुफाना अंदाज हमारे बाजारों का है, मैं सच कहूं मैंने वेस्ट में भी नहीं देखा ऐसा। टू दी पॉइंट बात होती है, कीमतें लिखी होती हैं, रखी हुई है, कोई सेल गर्ल पड़ी है उसे जाके एंड पे काउंटर पे जाके पैसे दो आ दो, कोई किसी के माथे नहीं लगता। बड़े बड़े खुले खुले मॉल होते हैं, लोगों ने जाके अपनी पसंद की चीज उठानी है, चल पड़ना। ठीक है, उनकी मर्जी, वो क्या पहन के जाते हैं, वो कैसे हाल में, हमें इससे कोई सरोकार नहीं है। वो कुछ भी करे हमारे लिए हुज्जत नहीं है। बट आज मैं और आप अपने पाकिस्तान के शॉपिंग के तरीके को देखें। आप एक तो 25-30-40-50 हजार रुपया झोंक के आए, 50 हजार तो लेके एक औरत आज निकलती ही होगी अगर लोन के 4 जोड़े लेने जाती है, और शादी की तैयारियों में तो 4-5 लाख लेके निकलती होगी। वल्लाही ये कड़वे जुमले हैं, लेकिन ये सच्चे हैं। और एक शादी का जोड़ा बनाने के लिए ये मुझे लोगों ने गवाहियां दी, आप ही जैसे लोगों ने, 10-10 चक्कर गाड़ियों का पेट्रोल फूकता है। कभी हम एक शहर में जाते हैं तो कभी दूसरे में, और फिर एक एक कपड़ा देखते हैं, फिर उस पर तनकीद होती है, फिर उस पर अपनी पसंद होती है, फिर जब वो बनता है तो वो वैसा नहीं बनता जैसा सोचा था, फिर हम लड़ते हैं, फिर बहस करते हैं, फिर उसमें कुछ चेंजेस कराते हैं। कहीं जाके एक दुल्हन का 2-4 घंटे का ड्रेस बनता है, और बस कितने का? इतने का, 5 का बस। चाहे आपने 1 का बनाया ना, लोगों को अपने 5 ही बताना है, क्योंकि कहा उसने 5। तो हम सच की बोले तो 5 लाख का जोड़ा बनाकर आप अपनी इज्जत करवा रहे हैं लोगों से, या क्या? देखिए ना, किस चीज को सजाते हैं ज्यादा पैसों से, जिसके अपनी को वैल्यू ना हो। मुझे किसी के अपने बुजुर्गों में से मिसाल याद आती है कि पहले दौर के लोग भैंस को जब बेचना होता था ना, भैंस बेचने निकलते थे तो उसको सजाते थे, उस पर गोटी वाली चादर डाल देनी, को फुंदने शुंदने लगा देने, जरा सी के ऊपर मालिश कर देनी कि चमकती भी दिखे, क्योंकि जरा देखने में नजरों में आएगी, क्योंकि बेचारी भैंस जो वैसे को नहीं लेता। तो आप मैं 50 हजार का भी जोड़ा पहन ले तो हमारी करतूत या हमारी औकात बदल जाएगी? बात करें तो बंदे को समझ आती है ये पहना किसने हुआ जोड़ा, और जो स्टाइल बोलने के, देखिए मैं तनकीद ये नहीं कर रही कि आप ये ना करें, मेरा इस वक्त आपने खुद मुझे कहा, ये मुझे टॉपिक मिला था कि आपने नमाज और पर्दे पे बात करनी है, तो पर्दा किधर गया हमारा? आज हम मुसलमान औरतों का पर्दा किधर है? अमेरिका हमें कभी नहीं धमकी देता कि खबरदार पाकिस्तान में पर्दा किया मार दूंगा, कल मुझे कोई कह रहा था कहीं बात कुछ हुई तो उन्होंने कहा कि हमारे मुल्क में तो हिजाब पे कोई बैन नहीं है, फिर भी लोग नहीं पहनते। देखिए फ्रांस बदनाम है, यूके में कोशिशें हो रही हैं बैन की, मुझसे एक एक मुल्क का हाल पूछ ले, हमारे हमसाए हैं सारे, किस मुल्क में बैन है, किस में 50 यूरो का खर्चाना है और किस मुल्क में लोग कहते हैं ड्राइविंग नहीं कर सकते, किस में नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह काफी हद तक इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे सकती हूँ, हमारे इस मुल्क में तो कोई बैन नहीं। क्या यहाँ पर्दा है बैन, हिजाब बैन, अबाया बैन, कुछ भी नहीं बैन, क्यों नहीं पहनते? इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जहाँ बैन है वो भी हमारे गुनाहों की सजा है। ऐसे किसी ने लाट में पूछा कि मैंने आना है भी नॉर्वे, तो मैं दाढ़ी जरा कर लूं लंबी दाढ़ी के साथ, मुझे मिल जाएगा वीजा? तो जो साथ थे उन्होंने मेरे हस्बैंड की तरफ इशारा किया कि इसको देख लो, अगर दाढ़ी छोटी करने से वीजे मिल जाते तो सारे क्लीन शेवर पहुंचे होते बाहर के मुल्कों में। कितना कच्चा ईमान है। किसी ने मुझसे पूछा, हमने सुना वहाँ बड़ी पाबंदियां हैं बाहर के मुल्कों में, आपका क्या एक्सपीरियंस है? तो मैंने एक ही जुमला बोला था, जितना जितना हमारा ईमान कमजोर होता जाता है उतनी उतनी पाबंदियां लगती जाती है, उस मालिक की सजा कि तुम मेरे बंदे नहीं बने, मैं तुम्हें बंदों का बंदा बनाऊंगा, तुमने मुझे मालिक नहीं समझा, मैं तुम्हारे ऊपर दूसरों को मालिक बना दूंगा। किसकी जरूरत है कि मुसलमान को टके? मुसलमान तो इतना गयूर और इतना अपने काम पे जाने वाला, उसको क्यों रोक टोके कि खबरदार तुम्हारी बेटियां पर्दा नहीं कर सकती, तुम्हारी नंगी औरतें टांगे खुली हुई है, बाजू खुले हुए हैं, गले खुले हुए हैं, वो नहीं डिस्ट्रेक्शन पैदा करती, और अगर किसी ने सर छुपा लिया तो मुश्किल होगी। ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है, और बिलीव मी मैं किसी तकाबुल की खातिर नहीं, हकीकत की बात करती हूँ कि आज वेस्ट में शऊर के साथ हिजाब और पर्दा करने वाली खवातीन की तादाद अपने मुल्कों की खवातीन से बढ़ती जा रही है। रिवर्स, और फ्रांस नाम ले लिया और इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं, इसीलिए नाम ले लिया, जहाँ के नाम लेकर लोग ये डराते हैं, हाय वहां जाके पर्दे ना करना मारे जाओगे, इमिग्रेशन पे रोक लिए जाएंगे। किसकी जरूरत है? कौन है जिसकी ये सब चीजें? लिल्लाही मा फिस समावाती व मा फिल अर्ध। तो वहां की एक सच्ची कहानी किसी ने शेयर की थी कि एक ग्रोसरी स्टोर था, जो भी मॉल का एक ग्रोसरी स्टोर है, तो वहां एक अरब औरत थी टिल पे बैठी हुई, टिल कहते हैं काउंटर को वहाँ। तो उसने देखा कि एक निकाब और हिजाब में एक औरत शॉपिंग करके आई और काउंटर पे आके चीजें दे के पैसे लेने लगी। तो जो काउंटर पे बैठी अरब औरत मुसलमान थी, वो उस मुसलमान पर्दे वाली औरत को गुस्से से बात करती है। जो खुलासा था इंग्लिश की बात थी, जिसका खुलासा क्या था कि वो उसको हिजाब में देख के कहती है, अगर तुमने ये हिजाब पहनना है ना, निकाब पहनना है, तो गो टू योर कंट्री। वो टिल पे बैठी औरत ये सोच रही थी कि ये कोई सऊदी या कोई पाकिस्तानी कोई मुसलमान औरत है, तो ये फ्रांस में आके पर्दा कर रही है, तो वो उसको बुरा भला कहने लगी, उसने इग्नोर किया। फिर उसने उसको फिर एक दो चार कड़वा जुमला बोला कि तुम जैसी है नकाब वालों की वजह से हम पे पाबंदियां होती हैं, ये है वो है। जब उसने दो चार जुमले बोले ना, तो वो जो टिल पे लड़की आई थी ना, उसने अपना निकाब खोला और वो फ्रेंच थी, रिवर्ट थी, कहने की दिस इज माई कंट्री, यू शुड मूव टू योर कंट्री, ये मेरा मुल्क है, तुमने अगर ऐसी बातें करनी है तो तुम अपने मुल्क में जाओ। ये कॉन्फिडेंस है। आज अल्लाह की वो सुन्नत मुझे सामने आती दिखती है कि मैं यर्तद्दान दीन को, जो अपने दीन से फिरता है तो शौक से फिर जाए, अल्लाह ऐसी कौम ले आएगा जो अल्लाह से प्यार करेंगे और अल्लाह उनसे करेगा। आज रिवर्ड्स के अंदर जो ईमान है ना, मैं कहती हूँ आपको सहाबा याद आ जाते हैं, यंग होते हुए बच्चे, छोटी छोटी काली दाढ़ियां, कभी आप उनकी आंखों में चमक तो देखें, ईमान का नूर देखें। मैं कहती हूँ जो वेस्ट में रहकर ईमान से जुड़ जाती है लड़की या लड़का, वो तो वाकई नूरुन अला नूर है, वो डायमंड क्रिस्टल है, उनसे बच्चों के रिश्ते करें आप। आप कहते हैं नहीं, पता नहीं बाहर कैसा होगा इधर होगा, बाहर अंदर की बात ही नहीं है, ये मीडिया और गैजेट्स ने तो फर्क मिटा ही दिया है कि आप अमेरिका में बैठे हैं या पाकिस्तान के गाँव में बैठे हैं, सब एक ही सोच पे चल रहे हैं। तो हमें अपना मुहासबा करना है, क्योंकि पांच बार जाए नमाज पे खड़ी होकर इहदिना सिरातल मुस्तकीम की दुआ मांगने वाली सिस्टर कभी अपनी इज्जत और इस्मत का सौदा नहीं कर सकती। भाव तो करने में भी बेहयाई होती, पर्दा सिर्फ कपड़े का नाम नहीं है, हया का नाम है, चलने का नाम है। लोच से बात करते हैं, बेतकल्लुफी से बात करते हैं, भाईजान भाईजान कहकर बात करते हैं, भाई बनाया हुआ ये बात करते हैं। मैं तो ये सिर्फ चार मिसालें सुनी देखी बाजार की दे रही हूँ, पूरी दुनिया में जाके देखिए, दफ्तरों में देखिए, स्कूलों में देखिए, कॉलेजेस में देखिए, कैंटीन्स में देखिए, होटल्स में देखिए, हर जगह आपको पर्दे का मजाक दिखेगा। वो सारी पाबंदियां खत्म हो गई और हैं हम नमाजी। ये कैसी नमाज है जो हमें नहीं रोक रही? देखिए आप गोली खाएं और असर ही ना हो, डिस्प्रिन खा रहे हैं असर नहीं हो रहा, और जो कोई और गोली खाए तो असर ना हो, दैट मीन वो गोली ठीक नहीं है। किसी ने ग्लूकोज की गोली को आपको वो नाम दे दिया। सबसे पौतक खुद को देखें। देखिए एक सिंपल सा तरीका है, जब घर से निकले, यहाँ तो हमारे घरों में ऐसे डिफरेंट तरह से माहौल है ना, बाहर के मुल्कों में अमूमन जब घर से निकलने की जो जगह होती है ना, वहाँ एक छोटी सी गार्ड रूम कह लीजिए या वार्ड रूम कह लें, गार्डे रूम कहते हैं नॉर्वेजियन में उसको, यानी जगह बनी होती है जिसमें कोट लटका लो, अपने जूते रख लो, उसके सामने एक फुल शीशा लगा होता है। लोग अक्सर बाहर जाने से पहले अपने आप को देख रहे होते हैं कि हम ठीक लग रहे हैं कि नहीं। आप भी तसव्वुर में लाएं कि आप जब घर से निकल रही हैं तो आपके सामने एक मिरर है, बस सर से पांव तक ये देख लें कि मैं बाहर जिस हालिया में जा रही हूँ, मैं दूसरों को क्या दावत दे रही हूँ। और आगे गर्मी आने वाली है, अल्लाह हम सब पे रहम करे। वो पतली पतली लॉन के जोड़े और वो चिकन और छेदों वाली शलवारें और गर्मी और उसके बाद आप देखिए जितने कपड़े महंगे हो गए उतने सीख-थ्रू हो गए। आप दूसरों को आजमाइश में ना डालें। फिर इसमें आप देखिए कि सिर्फ कपड़े ही नहीं है, जो बात आपको बड़ी अच्छी लगेगी अब क्योंकि उसमें आपसे तवज्जो हट के दूसरों पे जा रही है, और वो है मर्दों की निगाहें। पटर पटर आंखों में आंखें डालकर देखने वाले मर्दों में मेरा ख्याल है हमारा मुल्क नंबर वन है। गुजरना मुहाल हो सकता है कि लोग इस तरह आंखें खोल के देखते हैं, है कि नहीं? ये दुकानदार हैं या बैठे हैं या चौकीदार हैं या रेड़ी वाले हैं या बाबे हैं या जो भी है, हमारे इस कल्चर में आप देखिए कि लोग एक दूसरों को घूरते बहुत हैं। ऐसा है? कुरान क्या कहता है? यवद्दु मिन अब्सारिहिम, ऐ ईमान वालों अपनी नजरें झुका लो, होगा क्या? यफ़्ज़ु फ़ुरूजहुम, तुम निगाह झुकाओगे तुम्हारी शर्मगाह खुद ही महफूज हो जाएगी। ये भी पर्दा, औरत का पर्दा अगर चंद कपड़ों और हाल हुलियों में मबनी है ना, तो याद रखिएगा कि मर्दों का पर्दा निगाहों का झुकाना है। आप में क्या करें? पहली तो बात है कि आप अपने बच्चों को 7-8 साल की उम्र से ही इस बात की आदत डालें। और मैं देखती हूँ कि ये ट्रेनिंग घर से शुरू होगी। बच्चा माँ की तरफ देख रहे हैं, जवान बहन है, बच्चे सीखें कि बेटा लोअर योर गेज, नजरें झुकाओ, क्योंकि बच्चे जब कद भी बढ़ रहा होता है तो अक्सर आंखें खोल खोल के देखते हैं ना, प्यार से उनको समझाएं। और मुझे अक्सर कोई ऐसा 8-9 साल का बच्चा मिल जाए ना, बड़े प्यारे बच्चे होते हैं इस उम्र के, तो मैं उनको प्यार से ऐसे हाथ ऊपर कर दूंगी या करते थोड़ी कि इसको जरा सा नीचे रखो। जब घर में माँ बहन के सामने नजरें झुकी होंगी बाहर भी झुकेंगी, लेकिन हमारी नजरें तो मीडिया स्क्रीन के साथ ही जुड़ी होंगी। बाहर निकले तो बड़े बड़े बिलबोर्ड, आप सच बताइए नमाज पढ़ने वाली सोसाइटी के मुल्क में इतने बड़े बड़े बिलबोर्ड हो सकते हैं? ऐसे लगता है कि एक बला आपके सर पे भी गिर जाएगी बड़े से मॉल के ऊपर से गिर के। मेरा अरे कोई 50-50 फुट लंबी तस्वीरें आपके शहर में लगी हुई हैं, और बेचारियां इतनी मेहनत कर रही हैं आपके लिए कपड़े बेचती हैं। उन्होंने अपनी इज्जत को, अपनी इस्मत को और अपने हर मामले को दांव पे लगा दिया कि खुदा के लिए ये जोड़ा खरीद लो, तुम भी अच्छी लगोगी। क्या हम बाइकॉट नहीं कर सकते इन चीजों का? क्या मेरे पास कपड़े नहीं है? एक साथ करके तो देखें। मैं आप कहेंगे ना कोई नहीं मानेगा, 2-4 और मिल जाएंगे, इसी गली में एक दुकानदार हो, एक जाके कहेगा कुछ नहीं, दूसरा कहे नहीं, 10 लोग एक दिन में सेम बात कह के जाए तो सोचेगा ना, फैक्ट्री वाले को मैसेज देगा ना। लेकिन हम तो खुश हो गए कि चलो हमें 60 डिजाइन भी मिल जाते हैं। देखिए बात समझ रहे मेरी, ये ट्रेंड है। आप और मैं मिल के, आप अपना टाउन में बैठे ना, आप सारी सिस्टर्स ही नियत कर लें, इधर भी 2-4 कोई दुकानें तो होंगी ना कपड़ों की। हमने इस साल हर दफा जब भी कहीं जाए तो उनको ये मैसेज देकर आना है कि ये बड़ी बड़ी तस्वीरें खत्म कर दें, हमें ये मॉडल्स नहीं चाहिए, पहले भी कपड़े पहनते थे कि नहीं लोग? ये भी आपको पता है कि एक पूरा माफी है। 1,000 का जोड़ा 5,000 में कैसे बदलता है, आपने सोचा? जमीन तो वही कपास उगा रही है जो दुनिया में सबसे बेहतरीन कपास आपके मुल्क की, मेरे मुल्क की। ये जो 4,000 है ना, ये मार्केटर के पास जा रहा है, ये मॉडल के पास जा रहा है, ये उसको दूसरों की नजरों में पॉपुलर करने वालों की और ब्रांड की नजर में जा रहा है। पीछे है 1,000 का और मोहर देख के ही हम लेते हैं। हम कहते हैं नहीं, ये नहीं, ये ही लेना, चाहे वो 4 गुना महंगा, चाहे कपड़ा उससे भी अच्छा, हम कहते हैं नहीं लेना। तो आप और मैं अगर थोड़ा सा शऊर बेदार कराने के लिए ये जुमले बोलेंगे ना, आप देखिएगा कि वो आगे मैसेज भेजेंगे। ये तो पीयर प्रेशर, ये तो होता जब एक दुकान पे ये बातें, दूसरी पे ये बातें, तीसरी पे ये बातें, इंशाल्लाह आप देखिएगा कि वो कभी भी इसके बारे में नोटिस नहीं लेंगे। कौन सा दुकानदार है जो अपना पैसा जाया करे? मार्केटिंग का असूल है, सस्ती चीज ज्यादा बिकती है और महंगी चीजें कम बिकती है, प्रॉफिट उसमें ज्यादा होता है। अगर आप और मैं कहते हैं ये फालतू खर्चे कम कर दो, जोड़े की कीमत कम करवा दो, तो वो तो खुश होंगे ना। 5,000 का जोड़ा 5 खवातीन लेंगी, अगर 3 का कर देंगे तो हो सकता है कि वो 20 औरतें ले लें, उनका फायदा होगा। और सबसे बड़ी बात है कि ये शऊर पैदा करना है कि हम नाफरमानी करके कभी खुशी नहीं पा सकते। फिर इसी तरह से आप देखिए कि अगर पर्दे की मद में ही हम इन चीजों को देखें, आम हालात में तो हम फिर भी ठीक होते हैं, घर में कंगी चोटी किए रहते हैं, चलो ठीक है, तो इतनी तो हमारे अंदर रिएक्शन नहीं होती। जब हम सबसे ज्यादा खूबसूरत लग रहे होते हैं, सज संवर के, जब अल्लाह की नेमतों को इस्तेमाल करके खुशियों के मौकों पे पहुंचते हैं, तब क्या काम करते हैं। ये भी तो एक बेपर्दगी की किस्म है। शादियों में हमारा बन ठन के जाना, पहन ओढ़ के जाना, पहले तो फिर भी खवातीन में ये शऊर था, आज भी माशाल्लाह मौजूद है। तुम कई ऐसे हिस्से हैं पाकिस्तान के जिसमें हिजाब में आती हैं और मर्दों की मोस्टली दाढ़ियां होती हैं, ऐसी कम्युनिटीज मौजूद है माशाल्लाह। लेकिन आप और मैं अमूमन हमारे अपने पंजाब के कल्चर की शादियों को अगर डिस्कस करके देखें, है उसमें कोई बेपर्दगी की चीजें? ये फोटो सेशन क्या है? जवान बच्ची आपकी, अभी उसके दूल्हा ने उसको नहीं देखा और एक ऐसा शख्स उसको देख रहा है जो उसके जिस्म के एक एक काम की तस्वीरें बना रहा है। और ये मुझे 2-3 दिन पहले ही पता चला, 3-3 लाख रुपए का फोटो सेशन है। और पता नहीं उसके भी अब कितने दर्जे और किसमें निकल आई है। ये कल परसों कुछ साथी बातें कर रहे थे तो मैं पागलों की तरह सुन रही थी कि ये कह क्या रहे हैं। और कई फोटो सेशन ऐसे हैं कि उसमें इतनी इंतहाई खतरनाक किस्म की इनकी शर्तें माननी पड़ती हैं कि अल्लाह ही करे वो घर बस जाए तो बस जाए। क्या बनेंगे हम? हमें मिस वर्ल्ड का खिताब लेना? क्या हम चाहते हैं कि लोग हमें कहें मिस वर्ल्ड, आप दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत है? कह दें मिसा की नेमतों को अल्लाह की रजा के साथ इस्तेमाल करें, बहुत अच्छा गुजरेगा। तो मेरा ख्याल है कि आप सब इन सारे डिफरेंट एंगल्स पे जरूर सोचेंगे कि नमाजी सोसाइटी फोहश और मुनकर से बहुत दूर होती है। और आप देखिए कि बहुत सारे हमारे सेटअप में गलतियां, हम बाहर वालों के बनते ठनते सजते और घर वालों के हम सही जज्बात की भी कदर नहीं करते। वजह क्या कि अब घर वालों के लिए कौन पहनने वाले? अब अपने शोहर के लिए भी कभी कोई अच्छे कपड़े पहनते बोला? इनको तो पता ही नहीं चलता, ये तो खुश ही नहीं होते। जहां से कुछ मिलना था उधर को छोड़कर हमने दूसरों के जज्बात को उभार दिया। फिर इसके बाद आगे देखें, अब इसको आप खुद सोचिएगा। मैंने सिर्फ आपके जहन के अंदर चंद कंकर फेंके हैं, वल्लाही मेरा नहीं ख्याल कि इससे ज्यादा मुझे कहने की जरूरत है। आज से खुद सोचे मैं किस जगह कम हूँ, मेरे अंदर क्या कमी है, और किसी को रोल मॉडल बना ले। फलां जब ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकती, फलां ये पहन सकता है तो मैं क्यों नहीं पहन सकती, और सो ऑन। और अगली बात वाला ज़िक्रुल्लाह अकबर, अल्लाह कहते हैं और अलबत्ता अल्लाह का जिक्र सबसे बड़ा। अल्लाह के जिक्र जैसी दुनिया में कोई चीज नहीं। ये कौन सा जिक्र अभी? अल्लाह की याद। हम जिक्र किसको कहते हैं? अल्लाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये जिक्र नहीं है। जिक्र वो जिसमें याद हो, तस्करा, जैसे आप कहते हैं ना मैं आपके जिक्र कर रही थी, याद कर रहे होते हैं ना, और ऊपर से वो शख्स आ जाता है। तो जब अल्लाह का जिक्र करे ना तो अल्लाह अपने पास महसूस हो। और यहाँ पर कि नमाज का भी नाम जिक्र है और कुरान का भी नाम जिक्र है, कुरान का जिक्र भी कहा जाता है। جب دل میں اللہ کی یاد آ جاتی ہے اور اللہ کا مقام آ جاتا ہے نا, اس کے بعد پھر کوئی دنیا کی طاقت اچھی نہیں لگتی. ہر وہ کام کروں گی جہاں تک میرا رب راضی ہو. آپ دیکھیے کپڑوں کے بازو اترے, گلے کھلے ہوئے, شلواروں کے ٹخنے کٹ گئے, گھٹنے کھل گئے, چست پجامے آ گئے, ٹراؤزر سے آپ کہہ لیجئے کہ وہ کیا ٹائٹس پہ چلے گئے, سی تھرو پہ چلے گئے, چمڑی پہ ایک اور چمڑی پڑ گئی, کسی کے کان میں جوں تک نہیں رہی. یہی وہ ملک ہے کہ جہاں صرف ایک یا دو سال کی عمر تک کی بچیوں کی لیگنگز ملتی تھی, آپ کو بھی یاد ہوگا, جس کے ساتھ ہی نیچے ساکس بھی جڑی ہوتی تھی, لیگنگ بولتے تھے اس کو ہم لوگ. آج آپ کی 20 سال کی بچی کی لیگنگز بک رہی ہیں اس گلی گلی سڑک سڑک, اور کھال کے اوپر ایک کھال ہے, اور آپ کی بچی کی تھائیز کتنی ہیں, ہپس کتنے ہیں, اس کے نیچے کتنے ہیں, اس کی پھر نیچے پیچھے پنڈلیاں کتنی ہیں, اور اس کے پاؤں کتنے, جائیے اپنے ڈرائیوروں سے پوچھ رہے ہیں, خاندان کے جس بچے سے کہیں سناؤ فلاں کزن کی کمر کتنی ہے اور اس کے ہپس کتنے ہیں, اس نے میرا خیال ہے وہ بتا سکتا ہے. یہ کدھر سے آ گیا؟ یہ تو مسلمان کا برقع نہیں تھا. وہ کپڑے جو کبھی کو گھر میں نہیں سوچ سکتا تھا, واللہ گھر میں کہہ رہی ہوں, کوئی میاں بیوی رہتے ہیں ساتھ جوائنٹ فیملی سسٹم میں, کمرے میں جا کے کوئی نائٹی کے نام پہ کوئی چیز پہن لے, کوئی ٹراؤزر پہن لے, وہ اس کی خوشی ہے. وہ کپڑے جو کبھی بند کمروں میں تھے گھر میں بھی نہیں آ سکتے تھے, آج وہ گلی گلی پھر رہے ہیں کپڑے, اور شرم اور حیا کی نام کی تو چیز نہیں دیکھتی ہمیں, اور مائیں خریدتی ہیں کیونکہ ان کی بیٹیاں ان کے خیال میں اگر یہ نہیں پہنیں گی تو معاشرے کی دوڑ سے پیچھے رہ جائیں گی. دیکھیے عقل بھی تو بندے کو کچھ سمجھاتی ہے نا, اگر دین کی بات نہ بھی سمجھ جائے تو عقل تو سمجھاتی ہے نا. کھال کے اوپر آپ ایک اور کھال چڑھا لیں گے تو وہ کوئی اتنی اہم چیز تو نہیں آپ نے کر لی. ان سب کپڑوں کا بائیکاٹ کرنے کی ضرورت ہے, چیر دیں پھاڑ دیں ان کو, ان کی وہ تپڑیاں بنا لیں, گھر میں جھاڑو پوچھے میں کام آئیں گی, صفائی میں کام آئیں گی, لیکن آپ اپنی بچیوں کی حیا کو ختم نہ کریں. گھروں میں زنا ہوگا جب ایسے کپڑے ہوں گے, یہ بات لکھ لیں, اور یہ شواہد موجود ہیں اور حدیثیں موجود ہیں کہ قیامت کے قریب محرمات سے زنا ہوگا. ٹیمپٹیشن اتنی ہے, کہاں سے پھر اپنے جذبات کو پورا کریں؟ ایک طرف تو شادیاں ہو نہیں رہی کیونکہ ہمارے معیار بڑے اونچے ہیں, اور دوسری طرف شادیاں ہو بھی جائیں تو اس کے بعد ہمیں بہت ساری اٹریکشن دکھتی ہیں. زندگی کے مقصد کھوئے ہیں, اور میں آخری باتیں کرنا چاہتی ہوں کیونکہ موضوع بڑا کڑوا ہے, اور وہ کیا ہے کہ یہ سارے اثرات جو ہمیں دکھ رہے ہیں نا, یہ مقصد سے بھٹکی ہوئی قوم کی علامتیں ہیں. ہمارے پاس کوئی فوکس نہیں ہے. آپ بلیو نہیں, میں گوروں کی تعریف نہیں کرنا چاہتی, آپ کسی ملک میں دنیا میں جائیں جس کو آپ اور میں ہوائی چپل کہتے تھے, کبھی چپلی ہوتی تھی نا ہوائی جوتی, وہ پہن کے پھرتے ہیں یہ لوگ, بھائی ایئرپورٹوں پہ چل جائیں, مال میں اگر چلے جائیں, روڈ پہ چلے جائیں, دے ڈونٹ کیئر. ایک جوتی ان کے لیے کافی جب تک وہ چل رہی نرم, وہاں کی چپلی بھی مہنگی ہے مثال ہے, لیکن انہوں نے وہ پہنی ہے جس پہ وہ چل سکتے ہیں. دو چار ڈریس پھیکے گولے کالے, اور آپ کو تو اپنی شادیوں پہ وہ کپڑے کرائے پہ لے کے پہنتے ہیں, شاپس ہیں, ویڈنگ ڈریس جائیں آپ, $100-$200 دیں, آپ لے کے آ جائیں, پہن کے واپس کریں, وہ اس کو ڈرائی کلین کر کے پھر رکھ دیں گے. گوروں کو پتا چلے کہ آج ہم مسلمانوں کا ایک ایک ڈریس دو دو تین تین چار چار لاکھ روپے کا بنتا ہے, وہ تو ہم 8 دن ہی چھوڑ دیں کہ جھوٹ بول رہے ہیں, یہ جھوٹی ہم سے مدد لے رہے ہیں, ان کے پاس بڑا پیسہ ہے. وہ ریئلسٹک لوگ ہیں, ان کو کوئی کیئر نہیں ہے. آپ کبھی ان کے گھر ان کے کپڑے دیکھے, ایسے لگتا ہے مفلس سر کا لاش, ان کے اندر جیبوں میں کچھ نہیں ہوتا, وہ اپنی لائف کو انجوائے کرتے ہیں. کھا لو, ویکیشن پہ چلے جاؤ, سمر پلان بنا لو, ان کے بارے میں مشہور ہے کہ سارا ہفتہ جو کماتے ہیں وہ ویکینڈ پہ کھا پی کے آ جاتے ہیں. کیوں؟ کہ ان کے پاس ایک مقصد ہے, ہمارے پاس مقصد نہیں ہے, لاسٹ ہم. پھر ہمیں سمجھ نہیں آتا, پھر ہم جا کے شاپنگ کراتے ہیں, پھر ہمیں نہیں سمجھ آتا آپ کیا کریں تو ہم کسی فنکشن میں چلے جاتے ہیں. جتنی سوشلائزنگ آج ہم مسلمانوں میں, اس کا تصور بھی نہیں ہے باہر کی دنیا میں, وجہ کہ دے کینٹ افورڈ اٹ, ٹائم ہی نہیں اتنا, اور اتنا پیسہ. جو کسی بردر سے ایسی بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا ابھی ابھی مہندی کے کھانے کا آرڈر 3 لاکھ روپے میں دے کے آیا ہوں, ابھی ابھی کوئی بات ہو رہی تھی آپس میں لوگوں کی. تو میں نے کہا اس کا مقصد کہ इसके बाद होना क्या है, ना लड़की ने ससुराल में पहुंच जाना है, ना वलीमा है, ना शादी। ये मेहंदी में 3 लाख का सिर्फ और जो सेटअप ऑर्डर दे आए, पता नहीं अब उसमें 2 लाख और भी बाद में जाना ही होगा ना। इसका मकसद क्या, सोचते ही नहीं है और खुद भी परेशान। एक शादी पे घूम घूम के 4-5 दफा जाते आते हैं, सिर्फ खाना ही खाते हैं और क्या करते हैं, कपड़े दिखाते हैं, पहनते हैं, कितना गाड़ियों का पेट्रोल लगता है। और मैंने खुद देखा है 4-4 दिन एक एक शहर से दूसरे शहर में गाड़ी जाती भी रहती भी है। चलो टिक के बैठ जाओ, 4 दिन मजा करो, भाई बहन है, दिल लगे, खुशी। चलो भाई हलीम का देखता पका लिया, सारों ने खा लिया, निहारी बनी खा ली, फिर तो मजा आता था। पहले ऐसी शादियां होती थी, आपका पोटला उधर पड़ा, आपका उधर है, सब बैठ के एक सादगी से घर में बैठे। आज वो भी नहीं है, जाना रात को घर है, चाहे 4 घंटे सफर करना, अगले दिन फिर आना, नहीं अपने घर का कम्फर्ट है क्योंकि वहां कमरा नहीं मिलेगा। मिसाल दे रही हूँ आपको, लाइफ स्टाइल चेंज हो गया। कहने का मकसद है कभी शादी हॉल में बैठकर पूछे खुद से मकसद, वक्त का कितना जिया। और वल्ला ही दीन के लिए अगर हमें एक दफा भी निकलना पड़े, हम 10 दफा सोचते हैं राइट नहीं, कौन जाए, दूर बड़ा है, हमें यहाँ से हो सकता है ये मोड़ तक जाना भी दूर लगे, मकसद नहीं है। वला ज़िक्रुल्लाह ही अकबर, जिसके दिल में अल्लाह के जिक्र की बड़ाई होगी उसको हर रास्ता आसान है। उसको फजर से लेके ईशा तक 5 नमाजों के लिए अगर मस्जिद में 10 मिनट की ड्राइव भी करनी पड़े तो जाएगा। हमारे ट्रेंड बन चुके हैं, शादियों पे जाना ट्रेंड है, मंगनियों पे जाना ट्रेंड है, दावतों में जाना ट्रेंड है, कोई फौत हो जाए तौबा तौबा, हो ही नहीं सकता अपना जाए, इमरजेंसी कॉल करें, कुछ सारा खानदान उस फौतगी पे पहुंच जाएगा। अब क्या लेने आए हैं, नहीं जी लोग कहेंगे ये मरने पे नहीं आए, कब के बिछड़े वहां जाके मिलते हैं। ट्रेंड नहीं है मस्जिद में जमात से जाने का, नहीं बाद नमाज से जाने वाला तरस रहता है कि कोई मुझे गाड़ी में ले जाए, नहीं जाते लोग। फजर तो बहुत ही बड़ी बात है कि फजर में तो उठ जाए, जिसको जाना है वो जाए। बच्चों के स्कूल के लिए गाड़ियां निकलने का ट्रेंड है हमारा, शॉपिंग बेगम करने जाती है ट्रेंड है, बुटीक पे जाना ट्रेंड है, पार्लर पे जाना ट्रेंड है, ज्वेलर पे जाना ट्रेंड है, लेकिन कुरान क्लासेस में जाना ट्रेंड नहीं रहा, दीन के मदरसों को बात करना ट्रेंड नहीं रहा। और जितने रिसोर्सेज वल्लाही जितने रिसोर्सेज अल्लाह ने हम मुसलमानों को दिए, मैं बगैर किसी झिझक के कहूंगी जितने हम पाकिस्तान वालों को दिए इतने किसी के पास नहीं होते। ये सिर्फ एक नाम है कि पाकिस्तान गरीब मुल्क है, वल्लाही पाकिस्तान अमीर लोगों का गरीब मुल्क है। अगर ये मेरे आपके रिसोर्सेज सारे जुड़ जाएं अल्लाह के रस्तों में, ये सारा कुछ जिंदा होगा। वाला जिक्रुल्लाह ही अकबर की तफसीर हो जाएगी। और आखिरी बात, वल्लाहु यालमु मा तसनऊ, इसमें मुझे नहीं बोलने का हक, वो मालिक खुद ऊपर से कह रहा है, और अल्लाह खूब जानता है जो तुम करते हो। ये मुझे कह रहा है अल्लाह, ये दूसरों को बड़ी खूबसूरत बातें कह रहे हो, जरा अपना हाल भी देख लो, जो मैंने किया, जो मेरे हालात है, जो मेरी प्रायोरिटीज है, अल्लाह को बता। प्रायोरिटीज का फर्क है, किसी के लिए एक चीज अहम है वो उसके लिए कोशिश करता है। कुरान में आता है कुल्ली यामलु अला शाकिलती, सूरत बनी इसराइल में आता है, सूरत बकरा में आता है, वली कुल्लिन विजहुन वहुवा मुवल्लीहा, हर एक का एक विज है, विज कहते हैं फोकस, फोकल पॉइंट, हर एक का एक फोकल पॉइंट है, वो उसी के विर्द घूम रहा है। आपको दीन अच्छा लगता है, आप दीन के लिए निकलने के लिए तैयार है, माशाल्लाह आपको दीन अच्छा लग रहा है, और किसी के लिए तसव्वुर ही नहीं कि आप सफर करें दीन की बात सीखने और सिखाने के लिए। तो ये दुआ कीजिए कि अल्लाह हमारे पर्दे रख दे, हमारा दिल बात बदल दे, हमें सोचने वाली कौम बना दे, हम इस कुरान की तिलावत को ऐसे करें कि दिल पे गिरे। अबू बकर के बारे में हजरत आयशा फरमाया करती थी कि कान अबा बकर रजुलन बुकान, अबू बकर बड़े रोने वाले शख्स थे, उनको अपनी आंखों पे इख्तियार नहीं रहता था जब वो अल्लाह का कुरान पढ़ते थे। लोग परेशान हो जाते थे इस बात पे कि अबू बकर इतना प्यारा कुरान पढ़ते हैं कि हमारे हमसाए और बच्चे और औरतें मुसलमान हो रही हैं इनकी आवाजों को। अबू बकर घर में ना पढ़े, अब जाए बाहर ही पढ़े, क्योंकि हम पे आपके कुरान का असर हो रहा है। वो तलब का बात ही है जब कुरान समझ आता है। अकीम सलाह, अपने बच्चों से लेकर अपने घर के एक एक फर्ज पे नजर रखिए, किसने पढ़ी है किसने नहीं पढ़ी, ये आपका मेरा फर्ज है। और उसके बाद फिर नमाज का असर क्या, उसके असरात, ये कोई डंडे के जोर से करने वाली बातें नहीं है, ये अंदर पैदा करें, सोच पैदा करें, इंशाल्लाह اللہ کے نبی نے معاشرے کا تذکیہ کر دیا تھا. یہ قرآن ہی ہے. امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ اسی قرآن نے پچھلے دور میں اصلاح کی تھی اور یہی بعد کے دور میں اصلاح کرے گا. آج بھی انشاءاللہ یہ قرآن سے جڑنا ہے. ساری باتوں کے بعد ایک چیز آپ کرنا چاہتے ہیں تو قرآن سے جڑ جائیں بس. اس کے بعد قرآن خود ہی آپ سے مجھ سے کام لے لے گا اور پھر اس کے بعد اللہ کے ذکر کو بلند کریں گے اور اللہ مجھے آپ کو جانتا ہے. دعا کرتے ہیں کہ جو بھی کہا سنا اس میں اللہ اکبر کو قبول کرے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. يا الله يا رحمان يا رحيم يا مالك يا قدوس ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. یا اللہ ہمیں پکا سچا ایمان عطا فرما. یا اللہ دنیا میں بھی ہمارے عربوں کو ڈھانپ دے اور آخرت میں بھی ڈھانپ دے. سب ساتھیوں کے دلوں کی جائز خواہشات اپنی رحمت سے پوری فرما اور جو ساتھیوں نے کوشش کی جو بلایا بٹھایا یا اللہ سب کا قبول فرما. یا اللہ ہم سب کو اخلاص عطا فرما اور یا اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم تیرے ذکر کو بلند کرنے والے بن جائیں. یا اللہ جو بھی غلطی ہوئی اس کو معاف فرما. جو دنیا سے چلے گئے ان کی بخشش فرما. اور یا اللہ ہمارے ماں باپ کی زندگیوں میں سہولت عطا فرما. اور یا اللہ جو بچوں کی طرف سے پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما. یا اللہ جن کے گھر ٹوٹ رہے ہیں ان کے گھروں کو ٹوٹنے سے بچا. ہدایت کے ساتھ اصلاح فرما دے. اور یا اللہ جو بچیاں بن جوڑ کے بیٹھی ہیں ان کو بہترین جوڑ عطا فرما. یا اللہ ہمیں با مقصد قوم بنا. یا اللہ ہمارے اس ملک کو یا اللہ دشمنوں کی نظروں سے بچا. یا اللہ ہمارے برے اعمال کے کرتوتوں کے اثر سے بچا. یا اللہ ہمیں اپنے نفس کا محاسبہ کرنے والا بنا دے. یا اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم تیرے اس خوبصورت تحفے کو قبول فرمائیں. یا اللہ جس نے جہاں جس دعا کے لیے کہا اس کو قبول فرما. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین. سبحانک اللہم.